जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
ये खाड़ियां यह उदासी यहां न बांधो नाव ये जो तट है और ये जो उदासी भरा माहौल है अस्थिर है यहां अपनी नाव न बांधो ये खाड़िया यह उदासी यहां न बांधो नाव यह और देश है साथी यहां न बांधो नाव ये पराई जगह है सुरक्षा यह नहीं है, ये तुम्हारी कभी थी ही नहीं। इसलिए साथी यह नाव ना बांधो, यह खाड़िया यह उदासी यह न बांधो नाव। यह और देश है साथी यह न बांधो नाव। दगा करेंगे मनाजीर किनारे दरिया के, ये जो किनारे हैं इतने जो नैनाभिराम हैं इतने जो सुंदर दिखने वाले दृश्य हैं, ये सब क्या करेंगे धोखा। दगा करेंगे मनाजीर किनारे दरिया के, सफर में ही भलाई है यहाँ न बांधो नाव। जीवन प्रवाह है, यदि रुके, यदि किसी एक स्थान पर टिक गए तो बंधन उत्पन्न होगा। सफर में ही भलाई है यहां न बांधो नाव। फलक गवाह है कि जल थल यहां है डावाडोल, यह आसमान साक्षी है यहां का जल थल सब कुछ अस्थिर है, चलायमान है, डावाडोल है। जमी खिलाफ है भाई यहां न बांधो नाव, यह धरती तुम्हारे पक्ष में नहीं है, यहां रुकना मत। यहां की आबो हवा में है और ही बूबास, अजीब सी बदबू और अजीब सी अशुद्धि है यहां पर, दुर्गंध है चारों तरफ। इसलिए राही यहां न बांधो नाव। यह सरजमी है पराई यहां न बांधो नाव। किसी एक स्थान पर ठहर जाना भूल है, किसी एक व्यक्ति पर ठहर जाना भूल है, किसी एक रिश्ते में ठहर जाना भूल है, यहां न बांधो नाव। यह सरजमी है पराई यहां न बांधो नाव। डुबो ना दे हमें ये गीत कुर्बे साहिल के, ये जो तट पर गीत सुनाई दे रहे, ये खाड़ियों के पास नदी के किनारे पास समुद्र के साहिल के पास। डुबो ना दे, ये गीत तुम्हें डुबो सकते हैं, इन गीतों में आकर्षण है जो तटों पर सुनाई दे रहे, परंतु ये डुबो देंगे। डुबो ना दे हमें ये गीत कुर्बे साहिल के, जो दे रहे हैं सुनाई यहां ना बांधो नाव। अपनी नाव को यहां ना बांधना, जो बेड़े आए थे इस घाट तक अभी उनकी खबर कहीं से ना आई, यहां ना बांधो नाव। जो नावें यहां आई थी छोटी छोटी नाव, कहां खो गई पता नहीं। रहे हैं जिनसे शनासा यह आसमां वह नहीं, जिस आसमान से तुम्हारा परिचय है वो ये आसमां नहीं है। यह वह जमीन नहीं भाई यहां न बांधो नाव। यहां की खाक से हम भी मुसाम रखते हैं, ये जो मिट्टी है इसे हम पहचानते हैं, क्योंकि हम यहां से गुजरे थे, हमें पता है यहां क्या है। वफा की बू नहीं आई यहां न बांधो ना। यहां वफा नहीं है, है तो केवल धोखा, यहां न बांधो ना। जो सरजमी अजल से ही हमें बुलाती है, अनादिकाल से जो सरजमी बुला रही है, वो सामने नजर आई यहां न बांधो ना। ये पराई जगह है, तुम रुको नहीं। सवादे साहिले मकसूद आ रहा है नजर, मंजिल में बहुत स्वाद है। मंजिल के तट की चाह थी, ऐसा लगता है यहाँ रुक जाओ। सवादे साहिले मकसूद, लक्ष्य था जिसकी चाह थी, जिसमें रस था, वो लक्ष्य वो मकसूद, ऐसा लगता है यही वो है। इसी व्यक्ति की तलाश थी जिसको हम ढूंढ रहे थे। ठहरने में है तबाही, यहां न बांधो नाव। जहां जहां भी हमें साहिलों ने ललचाया, सदा फिराक की आई, फिराक ही मिली आखिरकार, निराशा जुदाई। जिस जिस से बंधे उस बंधन ने आखिरकार दुखी दिया, जिस जिस से अटैच्ड हुए हर अटैचमेंट में पीड़ा ही मिली। जहां पकड़ है वहां पीड़ा निश्चित है। जहां जहां भी हमें साहिलों ने ललचाया, सदा फिराक की आई, यहां न बांधो नाव, हमेशा जुदाई और निराशा ही मिली। इसलिए संसार के ये तट, संसार के ये नजारे, संसार के लुभावने स्थान सब अस्थिर है। सच्चा तट और सच्ची मंजिल वो एक परमात्मा ही है। उसके अतिरिक्त जो कुछ है भ्रम पैदा करने वाला है। ये मनाजीर किनारे, ये बहुत अच्छे अच्छे दृश्य, सब कुछ बंधन ही है। यहां न बांधो नाव, यहां न बांधो नाव। सूफी कवि कहता है, रुकना मृत्यु है, ठहराओ सड़ांध उत्पन्न करेगा, बहो बहते जाओ, जीवन अविरल प्रवाह है। किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, किसी दृश्य में, किसी स्मृति में, किसी वासना में, किसी भोग में रुकना नहीं। मूव, प्रोसीड, वॉक, मार्च, स्टॉप नॉट। उत्तिष्ठ भारत, उठो जागो, रुको नहीं, बस जहां ठहरेंगे वहां आकर्षण उत्पन्न हो। साधना का आज का 37वां दिन, 36 दिन पूरे हुए। 3 मुख्य साधनाओं में से एक साधना अमृत वेला है। अगर लड़ना है तो बहुत शक्तिशाली दुश्मन से लड़ना चाहिए, ऐसे छोटे मोटे दुश्मनों से लड़के क्या फायदा। एक गधे ने ललकारा शेर को, हिम्मत है तो लड़ो, शेर भाग गया। लोमड़ी ने पूछा शेर से, आप सम्राट हो, राजा हो, एक गधे से डर गए। शेर ने कहा, पहले तो गधे से लड़ना, क्या यह मुझे शोभा देता है? दूसरा, यदि मैं उससे लड़ा और उसको पराजित करता हूं तो इसमें मेरी कौन सी बड़ाई है? और यदि एक परसेंट चांस है अगर यह गधा जीत गया तो मेरी वंश परंपरा की, जो हमारे जो खानदान की जो इज्जत है, उसका क्या होगा? लड़ना भी है तो बहुत शक्तिशाली दुश्मन से लड़ना है, और शक्तिशाली दुश्मन केवल तीन ही है, एक निद्रा जिसका काट है ये साधना, ब्रह्म मुहूर्त की साधना 2 से 5, एक मिनट भी कम ना हो। अगर लड़ना है तो काम विकार से लड़ो, जिसने सारे संसार को अपने कब्जे में कर रखा है। ब्रह्मचर्य। और तीसरा भोजन, सारा संसार जिसका गुलाम है। लड़ाई केवल ये तीन ही है, बाकी सब परिणाम इस जीत के। तो आज के बाबा के महावाक्य, अमृत वेला, बाप दादा बच्चों के भाग्य का गुणगान करते हैं, अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं। इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है? सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वाले के गम के बादल और दुख की घटाएं समाप्त हो जाए, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लगे। ऐसे अपने को अनुभव करते हो जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है। ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एजेड आत्माएं गोल्डन बन जाए। ऐसी अवस्था अनुभव करते हो कोई भी आत्मा भिखारी बनाए और वह माला माल होकर जाए। ऐसी अपनी तकदीर की तस्वीर रोज दर्पण में देखते हो, किस समय देखते हो? अमृत वेला देखने का टाइम निश्चित है या चलते फिरते जब आता है तब देखते हो? सारे दिन में कितनी बार देखते हो? आजकल का फैशन है कि बार बार अपना डैश देखते हैं। क्या देखते हैं? संसार के लोग अपना चेहरा देखते रहते हैं। वह देखते हैं अपने डैश और आप देखते हो अपना डैश। वह देखते हैं अपने फीचर्स और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आपका फीचर्स की तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। संसार की अधिकतर ऊर्जा शरीर को सजाने में, सजने सवारने में जा रही है। बाह्य सौंदर्य की भूख कितनी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहां तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। तो आज ये 4 सूत्र है। सबसे पहला लकी स्टार, भाग्यशाली सितारा, एक तेजस्वी नक्षत्र। जिसका प्रकाश भीतर से आ रहा है वो किसी पर निर्भर नहीं है। यहां न बांधो नाव, जो कहीं बंधा नहीं है, जो स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है वही सबसे शक्तिशाली है। जो बंधा है, जो निर्भर है, जो आधार ढूंढता है, सुख के आधार, प्रशंसा के आधार, प्रसिद्धि के आधार, एक्नॉलेजमेंट के आधार, जो किसी और पर निर्भर है, वो इस संसार का सबसे अधिक कमजोर व्यक्ति है। ट्रू फ्रीडम इज ट्रू पावर। तो तुम हो सितारे, सबसे भाग्यशाली, सबसे श्रेष्ठ, स्वयंभू, भीतर का प्रकाश प्रकाशित कर रहा है, किसी और का प्रकाश नहीं। और तुम्हारी खुशी भी कैसी है, इतनी अधिक कि दूसरों के गम के बादल और दूसरों के दुख की घटाएं समाप्त हो जाए और वो सुख के झूले में झूलने लगे। इतनी संक्रामक कंटेजियस खुशी है। स्वयं खुशी में झूम रहे हैं। क्योंकि ये खुशी आत्मा का स्वभाव है, कहीं से छीनी हुई, कहीं से लाई हुई, कहीं से उधार की नहीं। और क्या प्रयत्न किया है? कुछ भी नहीं, केवल स्वयं के स्वभाव में स्थिर होना, जो दूसरे किनारे पकड़ रखे है, दूसरे साहिलों को अपना मान रखा है। बस उनको छोड़ दो, यहां न बांधो नाव भाई, यहां न बांधो नाव। ये जमी तुम्हारी नहीं है, ये सरजमी पराई है, यहां न बांधो नाव। ये तुम्हारी कभी थी ही नहीं, यहां जो नाव आए आई और वो खो गए। यहां मिलेगा केवल फिराक, जुदाई, दुख, निराशा। यहां न बांधो नाव। खुशी। एक सूफी संत मर रहा था अंतिम क्षण। वैद्य हकीम आए, सबने कहा बचने की कोई संभावना नहीं। उसके सारे शिष्य शागिर्द उसके इर्द गिर्द बैठे हुए, गम में दुख में। और वो अचानक कहता है, मेरे जूते कहाँ ले आओ। वो शिष्य कहते, जूते का क्या करना है? सुना नहीं हकीम ने क्या कहा, बस अब कुछ ही पलों में प्राण तन से निकले। उसने कहा, जूते लाओ, मुझे जूते चाहिए। सबने कहा, जूतों का क्या करना है? उसने कहा, मैं जीवन अपने ढंग से जिया हूं, अपने ढंग से मरूंगा, मुझे मेरे जूते चाहिए। जूते लाए गए, जूते पहने, उठा, सामने गया कब्रस्थान में और कब्र खोदने लगा। शिष्यों ने कहा, हम कर देते। उसने कहा, ना, कोई नहीं चाहिए, अपनी कब्र खुद खोदूंगा। कब्र खोदी, कब्र में जाके लेट गया, शिष्यों से कहा अलविदा और मर गया। उसका बस होता तो ऊपर से मिट्टी भी शायद वही डालता, कोई चाहिए ही नहीं, आउट। उधार का मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुद ही मरूंगा, मृत्यु में भी किसी पर निर्भरता नहीं, ना तुम्हारी सेवा चाहिए, ना तुम्हारा प्यार, ना टेंशन, ना तुम्हारा हाथ जो यहां रखे, ना तुम्हारी सांत्वना, ना तुम्हारे ग्रीटिंग्स, ना तुम्हारे गिफ्ट्स, ना तुम्हारी टोली, ना तुम्हारा भोजन। खुद ही अपनी कब्र खोदी और खुद ही लेट गया और खुद ही मर गया। जीवन भी निरंतर स्वतंत्रता में जिया और मरते हुए भी स्वतंत्रता। जहां जहां निर्भरता है, हमें ले चलो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, ये कैसी दुखमय स्थिति है, पराधीन जीवन। दूसरा बीमार तो हम दुखी, दूसरे की मृत्यु तो हम दुखी, दूसरे को कुछ होता है तो हम उदास, वो इंटरव्यू में रिजेक्ट होता है तो ऐसे लग रहा है जैसे हम ही रिजेक्ट हो गए। कौन माँ, कौन भाई, कौन बेटा, कौन पति और कौन किसकी पत्नी, यहां न बांधो नाव राही, यहां न बांधो नाव। बढ़ते जाओ, यहां हर एक अकेला है, हर एक की अपनी साधना है, हर एक की अपनी यात्रा, अपना सफर है। कौन किसके लिए क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। यह कैसा भ्रम हमने पाल रखा है कि हमें लगता है हम कुछ करेंगे। हमारी खुशी हमारी अपनी है, कहीं और से उधार ली हुई, चुराई हुई, छीनी हुई नहीं। हाँ, उससे अगर किसी और को फायदा हो जाए तो ठीक, पर उससे भी हमें कुछ नहीं लेना देना। पारस को कोई मतलब नहीं है उस लोहे के गुण अवगुण से। कोई भी आ जाए, गुणवान लोहा या फिर अवगुण वाला लोहा, जैसा भी लोहा हो, पारस मणि का काम क्या है? पारस इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बाधिक बैरी। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरी। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरी, समदर्शी है नाम तिहारो। सोई पार करो, सूरदास कहता है प्रभु मेरे गुण अवगुण तुम अपने चित्त पर न धरो, तुम समदर्शी हो। जैसे जो पारस मणि होता है वो भेद नहीं करता कि ये जो लोहा है ये कौन सा लोहा है, जो पूजा में रखा जा रहा है वो लोहा है या किसी लोहे से किसी जानवर का वध हो रहा है, वो भेद नहीं करता। उसे केवल इतना पता है कि लोहा पारस बन सोना बन जाए, लोहे को वो स्वर्णिम करता है। उसको दूसरों के गुण अवगुण से कोई लेना देना नहीं, दूसरों के गुण अवगुणों से वो डिटैच्ड है। तीसरा है पारस मणि, जिसकी सेवा करो उससे भी डिटैच्ड, जिसको ज्ञान सुनाओ उससे भी मुक्त, जिसका कल्याण करो उसमें न बंधो। तीसरा पारस मणि, और चौथा तकदीर की तस्वीर। बाबा ने कहा केवल अमृत वेला देखते हो या दिन भर देखते रहते हो? देखते रहो। कौन सी आदत है जो मुझे हटानी है, और कौन सा वो अभ्यास है जो चाहिए, उस अभ्यास को और गहरा करो। जो अभ्यास मेरे फायदे का है, जिस अभ्यास से आत्मा निखरती है, उस अभ्यास को गहरा करना है। और वो आदत जो मुझे तोड़ती है, वो आदत जो मुझे बिखेरती है, वो आदत जिसकी वजह से मैं कमजोर होता हूं, उस आदत को हटाओ। देखो आईने में तकदीर की, अपने तकदीर की तस्वीर, अपने भाग्य की तस्वीर दर्पण में देखते रहो। एक एक अवगुण पर काम करना है। एक अवगुण को मिटाने में हो सकता है कुछ साल लग जाए, और जब ऐसा लगे कि बस ये एक ही अवगुण है मुझ में और कोई अवगुण ही नहीं है, ये एक हट जाए तो मैं आगे का पुरुषार्थ करूंगा, इसके अलावा तो कोई अवगुण दिखता ही नहीं। और जब कुछ सालों में वो एक अवगुण हट जाता है तो पता चलता है दूसरा और एक और है, अब उस पर काम चालू करो। उसको हो सकता है कुछ साल लग जाए हटाने में, एक दिन में एक मास में हटते नहीं है, कई बार कई कई साल लग जाते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल एक ही संस्कार को हटाने के लिए। जब वो हट जाए तब फिर और दूसरा नजर आता है। चेतना की परतें बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। कौन कहां खड़ा है इसके ऊपर है। कोई ऐसी जगह खड़ा है कि उसे अपने अंदर कोई अवगुण दिखते ही नहीं। मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, यहीं पर संगम पर बन चुका हूं, और ये सारे जो है ये अवगुणधारी पता नहीं कहां से आ गए यहां पर। ये सबसे निचली सबसे लोएस्ट स्टेज है, जहां व्यक्ति को यही पता नहीं, इतना अंधकार छाया हुआ है कि सारा समय निंदा में बीत रहा है, सारी दृष्टि बाहर की तरफ है, उसे तो ये पता ही नहीं है कि भीतर अभी कितना गहरा काम करना बाकी है। ये अवस्था संपूर्ण अंधकार की अवस्था है। क्योंकि ध्यान किसी और को हटाने में, किसी और को और पर टिका हुआ है, और कितने संकल्प चल रहे हैं, कितनी प्लानिंग चल रही है। अपने एक एक अवगुण को हटाते जाओ, एक को पकड़ो और उस पर काम करो। कुछ साल लगेंगे, और कुछ सालों के बाद जब वो हट जाएगा पूरी तरह से, उसमें भी संभावना है कि हटने के बाद भी रिलैप्स, कीमोथेरेपी हो गया, ऑपरेशन हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, पार्टी हो गई, कैंसर पूरा खत्म हो गया, कुछ साल आराम से निकल गए, और एक दिन अचानक फिर से एक गांठ, फिर से जांच हुई तो पता चला कैंसर फिर लौट कर आ गया है। वो तो फिर भी स्थूल है, ये तो जन जन की बीमारियां है, इतनी सूक्ष्म बीमारियां है ये, कि आज जो लगा काम विकार नष्ट हो गया, है ही नहीं, चारों तरफ ब्रह्मचर्य के फूल खिले हुए हैं, और अचानक एक दबी हुई वासना फिर से उभरेगी और फिर से गिराएगी। तकदीर की तस्वीर अर्थात सेल्फ चेकिंग, देखते रहो। वो लोग अपना चेहरा देखते हैं, तुम अपने फ्यूचर, वो फीचर्स देखते हैं, तुम फ्यूचर को देखो। वो चेहरा देखते हैं, कहीं झुर्रिया तो नहीं है, कहीं कोई काला दाग तो नहीं है, बाल सही है, झड़ तो नहीं रहे, काले हैं ना प्रॉपर, सफेद तो नहीं हो रहे। सबसे टॉप का डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, उसको दिखाना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेहरे पर ऐसा कुछ है और हमें पता ही नहीं, और कोई आकर एक दिन कह दे और तुम थोड़े काले काले से दिख रहे हो, ऐसी यहां चोट लग गई। वो अपने फीचर्स देखते हैं, रंग देखते हैं, झुर्रिया देखते हैं, चेहरा देखते हैं, बाह्य सौंदर्य देखते हैं। सुंदर बनने की विधि क्या है? शरीर को भूल जाना। अगर सुंदर दिखना है तो क्या करो? शरीर को भूल जाओ। कितनी अच्छी विधि है ब्यूटीफुल दिखने की, क्योंकि आत्मा का आभूषण केवल पवित्रता है, और इसके अतिरिक्त जो भी आभूषण है वो आभूषण नहीं, बोझ है। तो आज के ये चार सूत्र है। सबसे पहला, मैं कौन हूं? सितारा हूं, स्टार हूं। सोचो ये संसार अंधकार में ही रात्रि है, और इस अंधकार में रात्रि में एक ही ध्रुव तारा है केवल, जो चमक रहा है आसमान में, फलक पर एक ही सितारा है, और वो मैं हूं, और मेरा ही प्रकाश है जो इस संसार को प्रकाशित कर रहा है। चारों तरफ दुख है, गम है, आंधी है, विकारों की, मैं वो दिव्य सितारा हूं, वो दिव्य नक्षत्र हूं। भाग्यशाली सितारा। दूसरा, खुशी किसी पर निर्भर नहीं है। तुम आज हो, कल चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ तो वेलकम, और जाओ तो भीड़ कम। खुशी। तीसरा पारसमनी। पारसमनी होता है क्या? किसी ने देखा है? पता नहीं, होगा शायद, या केवल एक मिथक, एक माइथोलॉजिकल पत्थर है। तो आज के दो होमवर्क है, एक होमवर्क उसी के ऊपर है, एक पत्थर लो कहीं से भी, उसको गोल्डन पेंट करो या फिर गोल्डन कागज लगाओ और उसको नाम दो पारसमणि। हाँ, ऐसा कोई भी एक पत्थर लेना है, आज का गृह कार्य एक, उसको गोल्डन कलर से कलर करो या फिर पेपर होता है पेपर, और उस पर लिखो पारस मनी, और वो अपने डेस्कटॉप अपने टेबल पर रख दो, जो याद दिलाए कि मैं पारस मनी हूँ। पारस मनी, मेरा काम है लोहे को सोना बनाना। वो लोहा कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें गुण अवगुण को मुझे देखना ही नहीं है। तो ये कार्य है आज का एक। दूसरा कार्य, एक स्टार बनाना और उसमें अपने ही तीन गुणों को लिखना, कोई भी अपनी तीन विशेषताओं को, कि मुझ में भी ऐसी कौन सी विशेषता है जो मुझे भाग्यवान बनाती है। एक तीन विशेषता तो हर एक में है ही। पहली, एक विश ये तीन ऐसी विशेषता है जो हर एक ब्राह्मण में है। पहली विशेषता कि साधारण रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिया, एक। दूसरी, प्यूरिटी। प्यूरिटी को स्वीकार किया, धारण किया या प्रयत्न तो कर ही रहे, ये दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता, परमात्म कार्य में स्वयं को अर्पित किया, सहयोगी बने, सेवाओं में लगे, कुछ तो कर ही रहे। अगर कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम सहयोग तो दे ही रहे। तो ये तीन विशेषता हर ब्राह्मण आत्मा में है। तो अपनी तीन विशेषताएं लिखनी है और ये दोनों होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करने हैं, तो ही मानेंगे कि होमवर्क किया, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो एक स्टार बनाना, उसमें तीन गुणों को लिखना, क्लिक एंड पोस्ट। दूसरा, एक पत्थर चुनना। अब ये पत्थर कहीं से भी चुनो, उसके लिए थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, झील के पास, या कोई जंगल, कोई गार्डन, उससे एक छोटा सा पत्थर लेना है, उसको थोड़ा साफ करके उसको गोल्ड पारस, और उसमें लिखना पारस मनी। तो ये आज के दो गृह कार्य। तो बाबा के महावाक्य सुने, चार सूत्र सुने और दो गृह कार्य। अभी 10 प्रश्न, 10 questions। तो आज का पहला प्रश्न, 9:10:87 की अव्यक्तवाणी। ये 10 प्रश्नों को प्रश्न रूप ना लेकर इन्हें समझना, ये टूल है, ये एक साधन है, ये महावाक्य है, अव्यक्त महावाक्य, ज्ञान का मोघ भंडार। इस महावाक्य का चिंतन करते 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 अपनी स्थिति को ऊंचा ले जाना है। कल भी हमने चर्चा की थी कि महान संकल्पों की रचना कैसे की जाए, श्रेष्ठ विचार, वो क्रिएटिव एनर्जी कहाँ से आए, जो विचार हमेशा नीचे रहते हैं उनको कैसे ऊपर उठाएं। जीवन परिवर्तन अर्थात संस्कार परिवर्तन, और संस्कार परिवर्तन अर्थात विचार परिवर्तन, और विचार परिवर्तन किससे होगा? अध्ययन से। कल हमने देखा था किताब मैं नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ हुम आई कॉन्वर्स डे बाय डे, वो किताब ही है जो मेरे मित्र है जिनके साथ मैं निरंतर बातें करता हूं। अध्ययन, वो मेरे मित्र है। कवि ने कहा था ये मित्र ऐसे है जो मुझसे कभी रुष्ट नहीं होते, ये किताबें मुझसे कभी नाराज नहीं होती। जब मैं अकेला रहता हूं निराहार रहूंगा, परंतु मुझे किताब चाहिए, संसार का साम्राज्य मैं ठुकराता हूं। कल कविता सुनी थी राम नरेश त्रिपाठी की, निराला, पर मुझे किताब चाहिए। तो ये भगवान के महावाक्य, इनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, उनमें हमें कुछ अपना दिखे, जीवन परिवर्तन के सूत्र दिखाई दे, क्योंकि इन्हीं अव्यक्त मुरलियों में जो पाते हैं वह इस संसार की किसी किताब में नहीं है। इतने श्रेष्ठ विचार और कहाँ मिलेंगे? संसार में लाखों करोड़ों किताबें हैं, लाखों करोड़ों शास्त्र है, पर किसी भी शास्त्र में इतनी ऊंची बातें नहीं लिखी है जितनी कि अव्यक्त मुरलियों में है। तो एक एक लाइन जीवन परिवर्तन का सूत्र है। प्रश्न पहला, सही है या गलत यह बताना है। यही संगम युग की विशेषता है जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। सही है या गलत है? क्यों सही है? यही समय है जब आत्मा अपने स्वराज्य की स्वराग साम्राज्ञी बनती है, अपने साम्राज्य की साम्राज्ञी बनती है आत्मा। किंग्स ऑफ योर किंगडम एंड क्वींस ऑफ योर क्वींडम, मैं राजा हूं, मन इंद्रियों की मालिक आत्मा। तो ये वाक्य क्या है? सही है। ये संगम की विशेषता है। अभी ये काम हो सकता है, द्वापर से अब तक क्या करते रहे? गुलाम, शरीर के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम। अभी समय है जब ऊंचते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे कौन बनते हैं? स्वराज्य अधिकारी, अपने साम्राज्य की आत्मा साम्राज्ञी बनती है अब। दूसरा प्रश्न, जब भी प्रश्न उत्तर सॉल्व करो उसका एक नियम है, पहले प्रश्न नहीं पढ़ना है, पहले उत्तर पढ़ना है। एमसीक्यूज की सॉल्व करने की विधि क्या है? जैसे मेडिकल में प्रश्न होता इतना बड़ा, उसको पढ़ते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। पहले क्या पढ़ना है? उत्तर, ऑप्शंस क्या क्या है, और फिर प्रश्न पढ़ो। तो उत्तर है पवित्रता, जिम्मेवारी, कमजोरी, लोभ वृत्ति। बताओ प्रश्न क्या है, बताओ। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता डैश का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। तो ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता डैश का ही सूचक है। उत्तर लोभ वृत्ति। ताज पहन के है तो कितना लोभ है, तो उत्तर क्या हुआ? लोभ वृत्ति। रॉन्ग। कमजोरी, जिम्मेदारी, प्यूरिटी, पवित्रता। उत्तर है पवित्रता। तीसरा प्रश्न, सही है या गलत है यह बताना है। बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि हरेक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हैं। क्यों सही है? तो प्राप्तियों के भंडार, तो बाबा कौन है? प्राप्तियों का भंडार। चेहरे से सहजयोगी की चमक दिखाई दे। चौथा प्रश्न, सही है या गलत? प्राप्ति भव कि वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती। जहां प्राप्ति है वहां पर निरंतर क्या होगी? खुशी होगी, अलबेलापन नहीं होगा। अगला ये भी वही है, सही गलत बताना है। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली लौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। असत्य मतलब झूठ मतलब गलत। तो संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली लौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। क्या उत्तर है? गलत। यह दरबार कैसी है? लौकिक नहीं, अलौकिक है। यहां सब कुछ अलौकिक ही है। वास्तव में हमारा जीवन ही अलौकिक है। हम वो नहीं देखते जो संसार के लोग देखते, हम वो नहीं सुनते जो संसार के लोग सुनते हैं। हमारा दृष्टिकोण, हमारा देखने का एंगल बदल चुका है। लोग सोचते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो, यहां क्यों जा रहे हो, 3 दिन पैसे वेस्ट हो रहे हैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, 3 दिन मधुबन में आना, उन 3 दिनों में कितनी कमाई हो जाती है, उधर बिजनेस बन करके यहां आना, अच्छा सौदा है या घाटे वाला है? दुनिया की नजर से कोई रोज 50,000 रुपए कमाता है और जो हमारे साथ काम करता है, और एक दिन कहता है मैं थोड़ा हमारे गुरु है ना उसके आश्रम में जाके आता हूं, 3 दिन हम क्या कहेंगे उसको, दोस्त को, अरे तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? वैसे वो लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे कि वहां क्यों जा रहे हो, वहां क्या मिलेगा तुमको। संसार के लिए जो प्राप्ति है वो हमारे लिए अप्राप्ति है, और हमारे लिए जो प्राप्ति है वो संसार के लिए अप्राप्ति है। संसार सोचता है ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हम सोचते हैं ये जीवन ही वेस्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न, सही है या गलत है? वैसे लौकिक परिवार में हर एक बच्चा बाप को कहता है कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। सही है या गलत है? लौकिक में हर एक माँ बाप या पिता क्या सोचता है? मेरा बेटा क्या है? राजा है। भले उसमें राजा के कोई एक लक्षण दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। राजा के क्या लक्षण होते हैं? यदि हमें को राजा बना दिया जाए अभी किसी एक देश का या किसी एक छोटी सी जगह का, तो क्या हम अपने आप को योग्य समझते हैं कि हमारे अंडर 10,000 लोग रहेंगे प्रजा और हम राजा हैं? योग्य है? राजा की क्वालिटीज क्या क्या है? राजा क्या करता है? पालना करता है, वो मात पिता होता है। भेष बदल कर भी छद्म वेश धारण करके राजाएं क्या करते थे? अपने प्रजा का हालचाल देखने के लिए रात में जाते थे, देखते थे कोई रो तो नहीं रहा है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई दुख में तो नहीं है, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं है। तो ये राजा के लक्षण है। वो क्या होता है? देख रेख करता है, मात पिता होता है। और क्या करता है राजा? न्याय, न्याय करता है। और क्या करता है राजा? समदर्शी होता है, प्रियदर्शी होता है। और क्या करता है राजा? प्रजापालक होता है। और क्या करता है राजा? प्यार करता है। और क्या करता है? बख्शीश देता है। और क्या करता है? कोई जरूरतमंद है उसकी मदद करता है, राज कोष से धन देता है, किसी को क्षमा करता है, दंड भी देता है, अपराधी को दंड देता है, और अपने सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता। प्रजापालक देव नाम प्रिय देवो सावो वो कहलाए। और क्या करता है? परिस्थितियों को फेस करता है। और यह भी कहा जाता है अगर प्रजा अगर पाप करती है, एक और सूक्ष्म नियम था, प्रजा में यदि पाप हो रहा है तो उसका 10% राजा को भी लगता है। अगर राजा से कोई अन्याय हो गया, कोई एक साधारण व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता है, तो ये बहुत बड़ा पाप नहीं है। परंतु यदि राजा ने किसी के साथ अन्याय किया तो उसका पाप भी बहुत बड़ा है। तो राजा बनना इतना आसान नहीं है जितना वो दिखता है ऊपर से, कि कितना इसको मान सम्मान दिया जा रहा है। रक्षा करता है वो दुश्मनों से, हर समय अलर्ट, और जब युद्ध काल नहीं है तो भी अपने आप को सशक्त करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम में जाता है, बॉडी बनाता है, रोज सुबह तलवार बाजी धार लगाते रहता है। कितने सारे कार्य है उसके। किसी साधारण व्यक्ति को आकर बिठा दिया राजा के इसमें, एक दिन में भाग जाएगा वो, क्योंकि राजा की दिनचर्या ही इतनी भयंकर है। चौथा प्रश्न, सातवां प्रश्न, दर्पण झरोका वातायन द्वार। यह चेहरे की वृत्ति और स्थिति का डैश है। उत्तर है दर्पण। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी डैश में आ नहीं सकती, इसलिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कभी भी मधुबन में आ नहीं सकती, गफलत में आ नहीं सकती, धोखे में आ नहीं सकती, अलबेलेपन में आ नहीं सकती। अलबेलापन, अगला प्रश्न, विनाश मधुबन में, अंत में अंतमति। नौवां प्रश्न, युद्ध में भी समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गवाया तो डैश भी युद्ध में रहेंगे, विनाश में भी युद्ध में रहेंगे, मधुबन में भी युद्ध में रहेंगे, अंत में भी युद्ध में रहेंगे, अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। उत्तर अंतमति। जीवन संघर्ष ना रह जाए, निरंतर संघर्ष ही करते रहेंगे क्या, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर के हेमलेट की तरह निरंतर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, करूँ कि नहीं करूँ, उठूँ कि नहीं उठूँ, मुरली में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्लास में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मुरली पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, सेंटर जाऊँ या घर पर काम चला लूँ, आज वैसे भी बारिश बहुत है, बिस्तर पर ही बैठ के योग कर लूँ, कंबल अपने वो रजाई के अंदर, कि और कुछ करूँ, देखने वाला तो कोई है नहीं, देखता थोड़ी है कोई, भूख इतनी लगी है, आसपास देखो कोई तो दिखना ही रहा है, ब्राह्मण बाहर का उठाया और खा लिया चुपचाप, और बाबा को सॉरी बोल देना बाद में, और बाबा को लेटर, तो अभी मधुबन तो जा ही रहे, लेटर लिख देंगे दो तीन कुटिया में बैठ के बड़े बड़े, और सारे पाप अब तक जो किए हैं बाप से क्षमा करके आ जाएंगे। आधे लोग तो उसी के लिए आते हैं इधर। खाली हो जाए ताकि वापस भर सके। दसवां प्रश्न, संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को डैश है सदा पुरुषार्थी भव। संगम युग को और ब्राह्मण आत्माओं को डैश है कलंक, दाग, अधिकार, वरदान, सदा पुरुषार्थी भव। तो ये कितने हो गए, 10 प्रश्न। ये खाड़िया यह उदासी यहां न बांधो नाव, यह और देश है साथी यहां न बांधो नाव, दगा करेंगे मनाजीर किनारे दरिया के, सफर में ही है भलाई यहां न बांधो नाव, फलक गवाह की जलथल यहां है डावाडोल, जमी खिस खिलाफ है भाई यहां न बांधो नाव, यहां की आबो हवा में है और ही बुबास, यह सरजमी है पराई यहां न बांधो नाव, डुबो ना दे हमें ये गीत कुर्बे साहिल का, जो दे रहा रहे हैं सुनाई यहां न बांधो नाव, जो बेड़े आए थे इस घाट तक अभी उनकी खबर कहीं से ना आई यहां न बांधो नाव, रहे हैं जिन से शंसा यह आसमां वह नहीं, यह वह जमीन नहीं भाई यहां न बांधो नाव, यहां की खाक से हम भी मुसाम रखते हैं, वफा की बू नहीं आई, यहाँ न बांधो नाव। जो सरजमी अजल से हमें बुलाती है, वह सामने नजर आई, यहाँ न बांधो नाव। सवाद साहिल मकसद आ रहा है नजर, ठहरने में है तबाही, यहाँ न बांधो नाव। जहाँ जहाँ भी हमें साहिलों ने ललचाया, सदा फिराक की आई, यहाँ न बांधो नाव। सर्व प्राप्ति भव, सदा पुरुषार्थी भव, या सदा सर्व प्राप्ति भव। दूसरी एक जगह पर पुरुषार्थी भव भी आया हुआ है, दूसरी मुरली में। तो अमृत वेले के महावाक्य, ये चार सूत्र, दो होमवर्क, 10 प्रश्न, आज की कविता क्या शीर्षक है, वाणी में विश। रूबी बेन,
ओम शांति। बाबा का भी और भाई जी का भी शुक्रिया जो हमें आते इतना सुंदर टॉपिक दिया, वाणी में विश। तो चिंतन चला थोड़ा, तो वो चिंतन एक कविता के थ्रू आपको सुना रहे हैं। तो ये है, ब्राह्मण होकर वाणी में विष क्यों रखते हो भाई, मधुर बोल की धारणा से कर लो सच्ची कमाई। वाणी में विष तो असुरों की पहचान है, अपने आप को देख तो क्यों बना इतना अनजान है। इस विष से खो देगा तो जन्मों के राजाई, ब्राह्मण होकर वाणी में विष क्यों रखते हो भाई। ईर्षा द्वेष के शब्दों से दूसरों का मन घायल हो जाता, ऐसा पाप करके फिर भी तू कितना इतराता है। उठो जागो ये आत्मा, मत कर बाबा से चतुराई, ब्राह्मण होकर वाणी में विष क्यों रखते हो भाई। वाणी का तीर ऐसा जो तेरे विकर्म बनाता है, मधुर बोल वो मरहम जिससे घायल मन हर्षाता है। अब तो व्यक्त से अव्यक्त बनने की शुभ घड़ी है आई, ब्राह्मण होकर वाणी में विष क्यों रखते हो भाई, मधुर बोल की धारणा से कर लो सच्चे कमाई।
मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। मशाले तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, पाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप काना कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललका। ना सो ना लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार, तोड़ दे नींद की जंजीर, थाम ले तप की मशाले, से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी तूठे तो विश्व सवरेगा, ना रुक ना झुक